मुझे पता नहीं था कि आप लोग कौन सा स्कंद पढ़ रहे हो, तो मैंने आते रास्ते में प्रथम स्कंद का एक श्लोक आज की चर्चा के लिए चुना है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का 23वां श्लोक है। त्यं त्याजं कलेवरं योगी मुच्यते कामं कर्म भी भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचयन् नाम कीर्तयन् त्याजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी भक्त।
अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जो भगवान भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन्हें उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्म के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तात्पर्य, योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है जो भगवान की सेवा में शत प्रतिशत अनुरक्ति है। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी है। भगवान का ऐसा योगी भक्त भगवान की सेवा में 2400 घंटे लगा रहता है। फल स्वरूप उसका सारा ध्यान नवधा भक्ति में लगा रहता है। नवधा भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन स्तुति दास्य भाव आज्ञा पालन सख्य भाव या समर्पण सम्मिलित है। योग के ऐसे अभ्यास से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है, जैसा कि समाधि के सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए भगवद गीता में स्वयं भगवान व्याख्या करते हैं। भगवान ऐसे विरले भक्त को योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है, और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक को भेजा दिया जाता है जहां भौतिक जीवन तथा उससे संबद्ध कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में जीव को अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों को सहना होता है। ऐसा भौतिक जीवन भौतिक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। भगवत भक्ति से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं का अंत नहीं हो जाता, अपितु वे भक्ति के सत्कार्य में लग जाते हैं। इससे इच्छाएं वैकुंठ चली जाती हैं। सेनापति भीष्मदेव यहाँ पर विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं, जिसे भक्ति योग कहते हैं, और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान को देख रहे थे। अतएव उन्होंने अगले श्लोकों में इच्छा व्यक्त की है कि भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष ही रहे।
त्याजन त्रेवरम योगी मूच काम कर्म अनुवाद अब दोहराइए कृपा करके मेरे बाद। जो भगवान भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन्हें उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो ये उपदेश दे रहे हैं भीष्मदेव जी। ये श्लोक हम प्राप्त करते हैं भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में, और इस अध्याय में हम देखते हैं कि भीष्मदेव जी का भाग्य ये था कि जब वो शरीर त्यागने की तैयारी कर रहे थे तो भगवान स्वयं वहां खड़े थे। युधिष्ठिर सारे देवता सारे पांडव उनके सामने खड़े थे। देखो क्या भाग्य, भीष्मदेव जी को ये वर प्राप्त हुआ था कि वो अपने मृत्यु के समय चुन सकते थे। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध की समाप्ति पर जब युधिष्ठिर महाराज को राज्य प्राप्त हुआ तो भीष्मदेव ने सोचा कि अब संसार त्यागने का समय आ गया है और उन्होंने संसार त्यागने की तैयारी की। तो वो लेटे हुए थे किस प्रकार के बिस्तर पर, तीरों पर। हम सादा व्यक्ति जब चलता है एक कांटे पर भी पांव आता है तो हमें दर्द महसूस होती है। हम जब परिक्रमा में जाते हैं वृंदावन, कांटे पर भी पांव आ जाए तो आपको दर्द महसूस होती है। और ये यहाँ लेटे हुए थे तीरों के बिस्तर पर और भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित थे, पांडव और सारे अपने भक्तों के साथ और देवताओं के साथ। और उस स्थिति में भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम पूछो भीष्म देव से कि धर्म का क्या अर्थ है। और फिर उन्होंने ये उपदेश दिया, भगवान अपने भक्तों की महिमा हमेशा बढ़ाना चाहते हैं। भक्तों की इच्छा रहती है कि भगवान की महिमा को बढ़ाएं, भगवान की इच्छा रहती है कि वो भक्तों की महिमा को बढ़ाएं। तो और भगवान ये भी बताना चाहते थे कि मेरा जो भक्त है वो हर स्थिति में उनका स्मरण कर रहा है। बेशक ऐसे देखे कि भौतिक दृष्टि से वो कठिन स्थिति में है, जब भी मन और बुद्धि पर पूरा वश है। जैसे कि हम भक्तों ने देखा कि जब श्रील प्रभुपाद जी ये पृथ्वी को त्यागने की तैयारी कर रहे थे, वो भी भीष्मदेव के समान लेटे हुए थे और जब भी उस स्थिति में भी उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद किया, उस स्थिति में भी भौतिक दृष्टि से तो आयुर्वेद वगैरह डॉक्टर सब कह रहे थे कि प्रभुपाद की स्थिति बुरी है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से मन और बुद्धि पर पूरा वश था। उस स्थिति में भी वो ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे। और तो भगवान ये बता रहे थे, जैसे भीष्मदेव के द्वारा ये स्थापित किया कि मेरा भक्त जो है हर स्थिति में मन और बुद्धि पर को वश में रखता है, उनकी सेवा कर सकता है। तो भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि तुम पूछो भीष्मदेव से ये उपदेश, क्या कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए। तो इस अध्याय में हम भीष्मदेव जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस श्लोक में भीष्मदेव जी क्या कह रहे हैं, जो भगवान भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम से, तो इस विषय में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि भगवान के जो नाम हैं वो बिल्कुल पवित्र हैं। भगवान के नामों में और भगवान में अंतर नहीं, भगवान में उनके स्वरूप में अंतर नहीं, भगवान में उनकी लीला में कोई अंतर नहीं, भगवान के नाम बिल्कुल ही पवित्र हैं। जब अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा तो अर्जुन ने क्या कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमा भवान, आप जो हो सबसे पवित्र हो, कहा ना। तो भगवान के जो नाम हैं वो भी सबसे पवित्र हैं। हमें यह कभी भूलना नहीं चाहिए, भगवान के उनके नामों में कोई अंतर नहीं है। नाम अचिंतामणि कृष्ण चेतन रास विग्रह पूर्णो शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नात्म नाम नामिना भिन्न नाम नाम नामिना, भगवान के नामों में पूर्णो शुद्धो नित्य मुक्तो। तो भगवान के जो नाम हैं ये बिल्कुल पवित्र हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, हे भगवान आप इतने दया दयालु हो कि आपने अपनी पूरी शक्ति डाल दी है। कहां, किसमें, अपने दिव्य नामों में आपने पूरी शक्ति डाल दी है, आपके दिव्य नामों में। आप इतने दया दयालु हो। तो भीष्मदेव जी भी यहाँ यही विचार प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पवित्र नाम, भगवान के जो नाम हैं ये बिल्कुल पवित्र हैं, क्योंकि भगवान के नाम पवित्र हैं, इसलिए जो व्यक्ति इन दिव्य नामों का उदाहरण कर उच्चारण करे, क्या परिणाम होता है? चेत दर्पण मार्जनम, हृदय की जो मैल है, ये मैल जिसके कारण हम भटक रहे हैं एक योनि से दूसरी योनि, एक ध्येय से दूसरे ध्येय में, इस मैल दूर हो जाती है। तो यहाँ कहा जा रहा है भीष्मदेव जी के द्वारा कि भगवान की भक्ति तथा चिंतन से, जो भगवान भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, दूसरे शब्दों में भक्ति और पवित्र नाम का कीर्तन करेंगे तो भगवान हमारे मन में अपने आप को प्रकट भी करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि अनेक स्थानों में भगवान यही कह रहे हैं, मन के द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मेरी शरण लो, मेरे भक्त बनो, कहते हैं ना, मन को अपना बंधु बनाओ। तो यहाँ भीष्मदेव जी कह रहे हैं भक्ति तथा चिंतन से पर पवित्र नाम के कीर्तन से, जब आप पवित्र नामों का कीर्तन करोगे सावधानी के साथ, तो भगवान जो हैं मन में भी अपने आप को प्रकट करेंगे, या दूसरे शब्दों में आप मन के द्वारा उनका स्मरण कर पाओगे। इसीलिए जब हम नवदा भक्ति के विषय में ज्ञान पढ़ते हैं और प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में भी नवदा भक्ति की चर्चा करते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि पहले कहा था श्रवणम, फिर कहा था और फिर कहा था विष्णु स्मरणम। प्रहलाद महाराज ने ये नहीं कहा विष्णु स्मरणम श्रवणम कीर्तनम, उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जिसका अर्थ क्या है, यही जो अर्थ यहां दिया जा रहा है इस श्लोक में, कि जो व्यक्ति पवित्र नाम से का कीर्तन करेगा उसी के मन में भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे, उसी के मन में। कई बार आप जब प्रचार करते हो तो आप ऐसे व्यक्तियों को मिलते हो जो कहते हैं हम तो 24 घंटे भगवान का चिंतन कर रहे हैं, कि नहीं मिलते हो ना तो लगे 24 घंटे भगवान का चिंतन करेंगे। एक समय हम प्रभुपाद जी के साथ बैठे थे दिल्ली में, प्रभुपाद जी किसी को दर्शन दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने तो कहा जैसे वो हर व्यक्ति से कहते थे भगवान का नाम लो, उसने कहा मैं भगवान का नाम लेता हूं 24 घंटे, पर कैसे, मन में। तो प्रभुपाद जी ने उसे कहा हाय बो, तो प्रभुपाद जी ने उसे कहा अगर तुम मन में नाम लेकर संतुष्ट हो तो खाना भी मन में ही खाओ, जब आपको भूख लगती है आप खाना पेट में मत डालो, मन ही मन में खा लो और पेट भर लो। तो उसने कहा नहीं, ये तो पेट तो नहीं भरेगा मन में खाने से। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे पेट नहीं भरेगा मन में खाने से, हरे नाम का लाभ ही नहीं पहुंचेगा, केवल ये सोचना कि हम मन ही मन में कर रहे हैं। तो श्रवणम कीर्तनम अगर हम करेंगे सावधानी के साथ, तो भगवान जो है अपने मन में अपने आप को प्रकट करेंगे। और फिर क्या उसका लाभ होगा, वे उन्हें उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। यम यम वापी स्मरण भवाम, ये कहां कहा गया है, गीता में। गीता में भगवान क्या कहते, जहां मन होगा मृत्यु के समय वहां ही उसी प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त करना पड़ेगा। तो प्रयास करना चाहिए कि मन के द्वारा हम सदा भगवान का स्मरण कर सकें, चिंतन कर सकें। और मन के द्वारा अगर हम सदा चिंतन करेंगे और स्मरण करेंगे, फिर मृत्यु के समय किसी प्रकार की चिंता या भय नहीं रहेगा। आप भागवत में महाराज भारत की कथा पढ़ते हो, किस प्रकार उन्होंने सब कुछ त्यागा था, पत्नी धन दौलत पर एक हिरण के प्रति आकर्षित हो गए थे। और क्योंकि मृत्यु के समय हिरण का स्मरण कर रहे थे, खोज रहे थे हिरण को, उन्हें हिरण के रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ा। और भागवत में हम ये भी पढ़ते हैं अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कथा। दुर्वासा मुनि ने राक्षस पैदा किया अपने सीके से, हाँ, अम्बरीश महाराज को सबक सिखाने के लिए। पर अम्बरीश महाराज का मन कहाँ था? भगवान के चरण कमलों में, सावे मना कृष्णा पधारा मना। और क्योंकि उनका मन था भगवान के चरण कमलों के चिंतन में, उनको कोई घबराहट नहीं हुई उस राक्षस को देखकर। उल्टा ये परिणाम हुआ, क्योंकि वो स्मरण कर रहे थे भगवान का, तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने क्या किया? दुर्वासा का पीछा किया। हाँ। और हम भगवत नहीं पढ़ते हैं पांचों स्कंद में, जब इसी भारत महाराज ने भविष्य में जद भारत के रूप में जन्म लिया, तो उनकी पिता के देहांत के पश्चात उनके सौतेली माँ और सौतेली भाइयों ने एक दिन उन्हें रखा था खेती की देखभाल के लिए। और जब वो खेती की देखभाल कर रहे थे, तो डाकू ने उन्हें चुरा लिया। और ये योजना बनाई कि इनको हमने बलि से मार देना है। किसको चढ़ाने के लिए? देवी काली को चढ़ाने के लिए। हाँ, उनके उन्होंने सोचा कि देवी काली को खुश करके उनके नेता को एक पुत्र प्राप्त होगा। कम बुद्धि के व्यक्ति ऐसे करते हैं। तो उन्होंने जद भारत को मसाज वगैरह किया और नहलाया, जैसे हम फल भगवान को भोग लगाने से पहले धोते हैं, साफ करते हैं। हाँ। तो ये दुष्ट व्यक्ति भी बलि को, कली को अर्पण भोग करने से पहले मालिश करते हैं, नहलाते हैं। पर जद भारत जो थे भय से रहे थे, भगवान के चिंतन में जुड़े हुए थे। और जिसका ये परिणाम हुआ क्या कि देवी खली मूर्ति से निकली और उसी चाकू से उन्होंने डाकुओं को काट दिया और जद भारत की रक्षा की। तो इससे क्या हम देखते हैं कि अगर हमारा मन ठीक स्थान में होगा तो हम भय से रहित होंगे। और ठीक स्थान में होने के लिए क्या अवश्य है? यह अवश्य है कि हम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें सावधानी के साथ। भीष्म देव जी ने बड़ा गहरा उपदेश दिया युधिष्ठिर महाराज के द्वारा हम सबको। तो मैं सोच रहा था कि अनेक विष्णुदेव का जो उपदेश है उसकी थोड़ी संक्षेप में चर्चा करें। विष्णुदेव जी ने कहा, विष्णुदेव ने कहा युधिष्ठिर को सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि धर्म के क्या नियम होने चाहिए, हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्या उसको निभाना चाहिए, क्या नहीं निभाना चाहिए। तो भीष्मदेव जी ने इस विषय पर बड़ा गहरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि एक, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना। तो किसी न किसी रूप से हम भक्तों को प्रयास करना चाहिए क्रोध को त्यागने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इन्हें हम हमारे शत्रु मानते हैं। तो भीष्म देव ने कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए। तो आप कहोगे तो क्या चैतन्य महाप्रभु क्रोधित नहीं हुए थे जब उन्होंने क्या देखा? ये देखा कि नित्यानंद के माथे से खून बह रहा था, हाँ क्रोधित हुए थे। पर वो क्रोधित हुए थे किस स्थिति में? जबकि नित्यानंद जी को किसी ने पत्थर फेंका था उनके माथे पर। तो इसके द्वारा हम क्या सीखते हैं, क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि साधारण व्यवहार में हमें क्रोध नहीं रखना चाहिए। पर जब हम देखें कि भगवान की भक्ति में कोई अड़चन कर रहा है या भगवान के भक्तों की निंदा कर रहा है, आलोचना, तो उस स्थिति में आप क्रोधित हो सकते हो। जैसे कई बार लोग कहते हैं वो भगवान के प्रचार में बंधन डालने का प्रयास करते हैं, तो उस स्थिति में आप क्रोधित हो सकते हो। नहीं तो साधारण व्यवहार में हमें क्रोध नहीं प्रकट करना चाहिए, खास करके जब हम वैष्णवों से व्यवहार रखते हैं। तो खास करके वैष्णव के संबंध में हमें अधिक प्रयास करना चाहिए निमृत व्यवहार को प्रकट करने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भीष्मदेव ने कहा युधिष्ठिर को क्रोध नहीं करना। फिर उन्होंने आगे क्या कहा दूसरे नंबर में मालूम? झूठ नहीं बोलना। उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना, तो हमें झूठ से बचना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है क्या? सत्यता। तो हमारा व्यवहार सत्य रहना चाहिए। हम सत्यता का पालन कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम भगवान का जो उपदेश है उसको सत्य रूप में स्वीकार करते हैं। ये नहीं कहते हम भगवान के भक्त हैं और भगवान के शब्दों को हम गलत अर्थ दे दें या अपना भाव अर्थ साथ जोड़ें। हाँ, तो ये है सबसे आवश्यक कि आप भगवान के संदेश को सत्यता के साथ स्वीकार कीजिएगा। इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता को प्रकाशित किया, उन्होंने भगवद गीता यथारूप के नाम से प्रकाशित किया। फिर आगे जो हमें गुरु परंपरा द्वारा उपदेश मिलता है उसको सत्यता से पालन करो। और आगे जब हम एक दूसरे से व्यवहार रखते हैं उसको उसका पालन करो सत्यता के आधार पर। तो भीष्मदेव जी कह रहे हैं झूठ नहीं बोलना, तो वैष्णव को झूठ नहीं बोलना चाहिए, खास करके वैष्णव के संबंध के साथ, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए झूठ का भी कोई ना कोई साक्षी है। हम कई बार सोचते हैं हम कुछ भी कर लेंगे, कोई साक्षी नहीं है। ये तो भौतिकवादियों की बुद्धि है, ठीक है ना? भौतिकवादी व्यक्ति सोचते हैं आज जियो कल किसने देखा है, तो झूठ बोलने से पाप करने से बिल्कुल डरते नहीं, सच बात है। पर आध्यात्मिक जीवन में हमारा ये विचार है क्या कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक जीवन में हम ये जानते हैं कि भगवान जो है हर चीज के साक्षी हैं। जैसे कि भगवान देवहूति ने भगवान कपिला देव से पूछा तीसरे स्कंद में, ये बताइए कि हमारा भविष्य किस प्रकार से निश्चित होता है। पूछा ना, कैसे निर्णय किया जाता है कि किस प्रकार का जन्म हमें प्राप्त होगा? तो कपिला देव भगवान ने कहा, कर्म न दैव नेत्रेण जंतु देहो पपतये स्त्री अप्रविष्ट उदाहरण भूम समृत कनशया। कि कर्म जो हम कर्म करते हैं उसके अनेक साक्षी हैं। हाँ, दैव नेत्रेण सारे देवता देख रहे हैं। तो अगर हम झूठ बोलेंगे तो वो सब साक्षी बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें झूठ से बचना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन इतना सुंदर है कि अगर हम गलती करें भी तो वैष्णव जो हैं एक मिनट में माफ कर देते हैं। जैसे कि आप देखिए अमरीश महाराज और दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि ने प्रयास किया था अमरीश महाराज को जलाने के लिए, पर अमरीश महाराज उनकी राह देख रहे थे एक साल के लिए। फिर दुर्वासा जब आए घूम 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 के, फिर उनके साथ उन्होंने प्रसाद स्वीकार किया। उन्होंने ये नहीं कहा अब मैं बदला लेने का समय। तो भीष्म देव ने कहा झूठ नहीं बोलना, तो ये हम सब भक्तों का लक्ष्य रहना चाहिए। हाँ, आगे कहा संपत्ति को समान वितरण करना, यही विचार ईशोपनिषद में भी है। ईशोपनिषद में क्या कहा गया है, ईशा वाशा इदाम सर्वम, जो संपत्ति को समान वितरण करना। अगर संपत्ति का समाज में समाज समानता के साथ वितरण हो तो चोरी डाका ये सब बंद हो जाएगा। ईशा वाशा इदाम सर्वम याद किंचा जगत यहां जगत तेना तक तेना भूंजिता मार्ग रहा कसस्व धनाम। श्री ईशोपनिषद में कहा गया है कि हर व्यक्ति को उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना कि अवश्य हो, और उसे अधिक नहीं, उसे अधिक उसे अर्पण कर देना चाहिए। किस किस चरणों में, भगवान के चरणों में, क्योंकि वो ही है असली स्वामी। जब श्रील प्रभुपाद जी गए थे रूस में 1972 में, उन दिन में रूस में था कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म का, कम्युनिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, साम्यवाद। उस दिन में था साम्यवाद सरकार। तो साम्यवाद सरकार का ये थ्योरी में तो ये भाव रहता है कि सारी संपत्ति समानता के साथ वितरण होनी चाहिए, और संपत्ति है किसकी, सरकार की। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें समझाया कि ये सब संपत्ति जो है, प्रभुपाद जी ने उन्हें ईशा वाशी दाम सर्वण श्लोक सुनाया और कहा ये जो संपत्ति है, ये सारी संपत्ति के स्वामी कौन है, परम भगवान। ये सारी संपत्ति के स्वामी है परम भगवान, सरकार नहीं, आप नहीं, हम नहीं। इसलिए जो वैष्णव भक्त हैं उनका ये विचार है, उनकी ये समझ है, उनका ये सिद्धांत है कि सारी संपत्ति के स्वामी हैं परम भगवान, और इसलिए वो हर संपत्ति हर सुविधा का उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में। तो भीष्म देव ने कहा संपत्ति का समानता के साथ वितरण करना। हमारे शास्त्र में हर समस्या का हल है। आजकल आप क्या देखते हो, आजकल ये देखते हो जो अमीर है वो और अमीर बन रहे हैं, और जो गरीब है वो और गरीब बन रहे हैं। अक्सर तो यही देखा जाता है। अब रूस में जाओ, वहां जाओ, उन्होंने कम्युनिज्म छोड़ दिया, हाँ, तो क्या देखते हो 6-7% आबादी और अमीर बन रही है, और 80% आबादी और गरीब बन गई। तो आप सड़क में देखते हो ज्यादा बड़ी मोटरें, तो ये बड़ी मोटरें तो 4-5% आबादी की है, बाकी जो 80% है वो तो ज्यादा गरीब बन गए हैं। तो भीष्म देव जी का क्या उपाय है कि संपत्ति का समानता के साथ वितरण करो, और इस प्रकार आप देखोगे समाज में शांति आएगी। आज समाज में शांति नहीं है, बेचैनी है, चोरी है, डाका है। क्यों, लोग कहते हैं तुम्हारे पास इतना धन क्यों है, हमारे पास होना चाहिए, तो इसलिए वो हर प्रकार का गलत काम करते हैं। आगे चौथा नियम जो भीष्म देव ने दिया वो ये है क्षमा करना। क्षमा करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भीष्म देव ने कहा क्षमा करना, तो वैष्णव में ये भाव रहना चाहिए क्षमा करने का। हम देखते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको अमरीश महाराज का उदाहरण दिया सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज को और उनके भाइयों को क्या नहीं किया कौरवों ने उन्हें नष्ट करने के लिए, नहीं उन्हें जहर खिलाया, खा आओ खाना खाने, खाने में जहर था, उनके घर में भेजा रहने को, जिसको आग लगा दी, क्या नहीं किया। हाँ, पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब सब मारे गए, धृतराष्ट्र के सारे रिश्तेदार सब, जब भी युधिष्ठिर महाराज ने क्षमा केवल नहीं की, क्षमा के साथ उन्हें इतना आदर दिया, आदर के साथ सुविधा भी दी। क्या सुविधा दी? उन्हें रहने के लिए एक बहुत बड़ा महल दिया, इतना बड़ा महल कि धृतराष्ट्र जो भौतिक दृष्टि से तो अंधे थे, पर आध्यात्मिकता से भी अंधे थे, एक रूप से अंधे थे नहीं थे, उनको पता था कि इस युद्ध में मेरे सारे बेटे सब मारे जाएंगे, उनको पहले से ही पता था। पर उनको ये भी पता था क्योंकि वो इतने आकर्षित हैं अपने बेटे के तरफ कि वो सच्चाई को देख नहीं पा रहे, तो एक रूप से अंधे थे और नहीं भी थे। पर जब उन्हें ये बड़ी सुविधा प्राप्त हुई, हाँ, महल वगैरह, तो उन्होंने क्या सोचा, अब मेरी राजसिक अभिलाषा प्राप्त हो गई। और युधिष्ठिर महाराज ने, देखो युधिष्ठिर महाराज ने ये नहीं कहा अब हम आपको सजा देंगे, आपने हमारे पर यह अत्याचार किया था तो अभी हम बदला लेंगे, नहीं, उन्होंने ये नहीं, उन्होंने एक क्षमा कर दी। तो वैष्णव भक्तों में आखिर हमें भूलना नहीं चाहिए, जो उपदेश भीष्म देव जी दे रहे हैं ये भक्तों को दे रहे हैं, अभक्तों को नहीं। ये तो ये जो उपदेश दे रहे हैं इसका हम भक्तों से बड़ा संबंध है, हम भक्तों का हमारा आचरण इस शिक्षा पर निर्भर रखना चाहिए। ये जो भीष्म देव जी का उपदेश, आखिर ये उपदेश भीष्म देव जी का है। तो भीष्म देव जी कह रहे हैं क्षमा करना, तो वैष्णव में एक क्षमा की भावना हो तो थी। कई बार वैष्णव में अनबन भी हो तो अनबन कैसे समाप्त हो जाता है, आप लोग ने वो हरे कृष्णा वर्ल्ड फिल्म देखी थी, वर्ल्ड ऑफ हरे कृष्णा, हाँ, तो वर्ल्ड ऑफ हरे कृष्णा में अंत में दिखाते हैं, कहते हैं ऑल डिफरेंसेस आर सेटल्ड बाय रसगुल्ला, वो एक भक्त दूसरे को रसगुल्ला खिलाते हैं और एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और सब जो अनबन हो समाप्त हो जाता है। तो भक्तों में ये क्षमा की भावना होनी चाहिए, जैसे कि हम चैतन्य चैतन्य में भी एक कथा पढ़ते हैं, ये शिवाज ठाकुर की, शिवाज आचार्य की, वो ब्राह्मण जिसने दुर्गा देवी की पूजा का सामान रख दिया था उनके कमरे घर के सामने उनका अपमान करने के लिए, क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या थी कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने भक्तों के साथ इनके घर में रोज कीर्तन करते हैं तो इनको कितना आदर मिल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि इनका अपमान किया जाए, तो उन्होंने शराब की बोतल सब उनके कमरे के सामने रख दी कि लोग ये सोचें कि ये शराब दुर्गा जी के उपासक है। खैर, सजा भुगतनी पड़ी, बहुत देर भुगतनी ये वैष्णव अपराध के लिए, पर अंत में चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें भेजा शिवाज आचार्य के पास, उन्होंने क्षमा कर दिया। तो क्षमा करना, पर ये क्षमा करना का यह अर्थ नहीं कि आप जानबूझकर अपराध करते जाओ और आप क्षमा होते जाए, पर हमारे में क्षमा की भावना होनी चाहिए। आगे, अपनी वैध पत्नी से संतान उत्पन्न करना, संतान उत्पन्न करना तो केवल पत्नी के द्वारा ही होना चाहिए। आजकल तो भौतिक समाज की स्थिति इतनी बिगड़ गई है, खास करके पश्चिम देशों में, कि आजकल तो लोग विवाह में विश्वास नहीं करते। आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी आई है अंग्रेजी भाषा में, उसको कहते हैं लिव इन हस्बैंड लिव इन वाइफ, मतलब कि उसके हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे पता नहीं, मतलब कि अगर समझो कि आप पत्नी के साथ रह रहे हो और प्रमाणिक तरीके से शादी नहीं हुई, तो उसको कहते हैं शी इज माई लिव इन वाइफ, ही इज माई लिव इन हस्बैंड। मतलब हम एक साथ रह रहे हैं पति पत्नी के रूप में, पर विवाह नहीं हुआ। और वो तो शर्माते भी नहीं हम, अब तो खुला है। पहले तो लोग शर्माते थे, अब तो लोग शर्माते भी नहीं। तो यहाँ भीष्म देव जी कह रहे हैं समाज की सुरक्षा के लिए हाँ अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना चाहिए। आगे क्या कर, मन तथा शरीर से शुद्ध रहना, हाँ मन तथा शरीर से शुद्ध रहना। तो मन को शुद्ध बनाना और रहना शुद्ध तरीके से, ये बहुत अवश्य है। और मन को आप शुद्ध कैसे रखोगे, मन को शुद्ध रखोगे अगर आप शुद्ध विचार रखोगे, शुद्ध कार्य करोगे, अच्छी संगत में रहोगे। संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए कहा गया है साधु संगत साधु संगत सर्व शास्त्र काया लाभ मात्र साधु संगत सर्व सिद्धि। भक्तों की संगत रखोगे, चाहे भक्तों में कितनी भी कमी हो। कई बार मैं आश्चर्य होता हूँ ये देखकर कि कई बार हम सोचते हैं क्योंकि इन भक्तों में कमी है, हम उनकी मंद नहीं जाएंगे, संगत नहीं देंगे। मंद नहीं जाओगे, संगत नहीं लोगे, तो अंत में परिणाम क्या होगा, आप ही कमजोर हो जाओगे। जैसे कि एक उदाहरण प्रभुपाद हमें देते थे कि एक समय शरीर के सारे अंगों ने कहा क्या कारण है सारी अच्छी चीजें पेट में ही जाती हैं। अच्छा रसगुल्ला समोसा कचौड़ी पकौड़ा हमारे हाथ में आंख के सामने ज्यादा देर रहता ही नहीं है ना। अच्छे पकौड़े आए तो आप एकदम ये सोचते चलो इसको जीप के द्वारा पेट में भेजेंगे ना, एक दो मिनट देखोगे। तो सबने कहा ठीक है, हम सब स्ट्राइक में जाते हैं। तो आंख ने कहा हमने आप अच्छा खाना सामने आएगा भी तो आंख हम बंद कर लेंगे। हाथ ने कहा चाहे कितना भी अच्छा खाना कोई बनाए हमने उठाकर मुंह में नहीं डालना। पांव ने कहा चाहे कितना भी अच्छा खाना हो हमने खाने के टेबल की तरफ चल के जाना ही नहीं, तो पेट भूखा रहेगा। तो सबने इस प्रकार का निर्णय कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद सबने महसूस किया कि वो सब कमजोर हो गए। हाथ ने कहा मैं तो उठा नहीं सकता अपने आप को। पांव ने कहा मैं तो चल नहीं सकता। तो सारे अंगों ने ये महसूस किया कि वो सब कमजोर हो गए। तो सबने फिर से एक सभा बुलाई, क्या कारण है कि हम कमजोर हो गए हैं। तो बुद्धि ने कहा कमजोरी का कारण यह है कि हमने पेट में खाना डालना बंद कर दिया, इसके कारण हम सब कमजोर हो गए। फिर सब ने निर्णय किया हां पेट को खाना जरूर डालना था। तो इसी प्रकार भक्ति सेवा भक्तों की संग में हमें जरूर रहना चाहिए हर स्थिति में। और अगर कोई कमी भी हो दोष भी हो प्रयास कर सकते हैं, बाकी भगवान के हाथ छोड़ना पड़ता है। पर हमें अपनी तरफ से पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे रहना चाहिए, साधुओं की संगत का भी लाभ उठाना चाहिए। तो भीष्म देव जी कहते हैं मन को शुद्ध बनाओ और शरीर को शुद्ध रखो। हाँ जो शरीर को शुद्ध कैसे रखना, सफाई के साथ क्लीनलीनेस धर्म के चार अंगों में एक है। हमें साफ वस्त्र पहनने चाहिए, शरीर को रोज स्नान करना चाहिए। सुना सन्यासी के विषय में कहा गया तीन बार दिन में स्नान करना, कम से कम दो बार तक करना चाहिए सर्दी हो या गर्मी हो। बहुत एक समाज में तो लोग स्नान करने में भी विश्वास नहीं करते। जैसे आपने फ्रांस सुना है, फ्रांस देश में ये समाज वहां के लोग महीना महीना स्नान नहीं करते। हम विश्वास नहीं करोगे, एक हफ्ते के लिए स्नान नहीं करना ये तो साधारण चीज है, अब पता नहीं, पर 20 साल पहले 30 साल पहले तक तो ऐसी स्थिति थी। और वो लोग शरीर के बदबू को छुपाने के लिए क्या करते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं। इसके लिए सारे परफ्यूम फ्रांस में पैदा हुए क्योंकि वहां के लोग स्नान नहीं करते थे, तो ये बदबू को रोकने के लिए उन्होंने परफ्यूम इंडस्ट्री फ्रांस से ही पैदा हुई थी, सारे महंगे परफ्यूम फ्रांस के ही आते हैं। पर वैष्णव भक्तों के लिए भीष्म देव जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मन तथा शरीर को शुद्ध रखना, तो शरीर को हम शुद्ध रखते हैं सफाई के साथ, साफ वस्त्र पहनना, साफ कपड़े पहनना, शरीर को स्नान करना दिन में दो बार, मंदिर को बिल्कुल साफ रखना, ब्रह्मचारी आश्रम को बिल्कुल साफ रखना। प्रभुपाद जी जब किसी मंदिर में जाते थे सबसे पहले ये देखते थे कि कोई गंध तो नहीं है, और अगर किधर भी कोई गंध देखते थे तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्से हो जाते थे। एक समय मुझे याद है वो वृंदावन मंदिर की इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो वृंदावन प्रभुपाद की बड़ी तेज आंखें थी, तो आपको पता है वो आगे दो कमरे हैं वृंदावन मंदिर में जहां प्रचारक बैठते हैं, तो एक मंदिर वो बाएं तरफ के कमरे में बैठे थे कुर्सी में, तो पूछे थे तो मंदिर को साफ रख रहे हो, हमने कहा हाँ सब, तो जैसे कहा तो प्रभुपाद जी ने ऊपर पंखे पर देखा और पंखे के ऊपर था एक घोंसला, तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम कहते साफ रख रहे हो ये देखो घोंसला। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि मंदिर भी बिल्कुल साफ रखा जाए, और हमें भी प्रयास करना चाहिए बिल्कुल सफाई, जब हम प्रसाद खाते हैं तो प्रसाद खाने के बाद एकदम सफा कर देना चाहिए। सबसे अच्छा नियम ये है कि जो व्यक्ति खाए वही व्यक्ति वहां सफाई करे, इन्हें कि साहब ने खा लिया और नौकर आएगा साफ करने के लिए, है ना, ये नहीं, हम खाएं खुद ही हमें साफ करना चाहिए, खुद ही जाकर थाली को भी साफ करना चाहिए, नहीं थाली वहां फेंक दिया अभी नौकर आएगा साफ करने के लिए, नहीं खुद ही साफ रखना चाहिए। और डीडी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सफाई रहनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि ठाकुर सेवा के विषय में दो नियम बहुत महत्वपूर्ण है, एक है क्लीनलीनेस, दूसरा है पंक्चुअलिटी, कि एक है सफाई और दूसरा क्या, जो भी आरती वगैरह हो बिल्कुल ठीक समय पर होना चाहिए। हाँ देने की 7:15 है तो आज 7:30 हो गया, जैसे आप वृंदावन में भी जाओ मंदिरों में जाके पूछो हाँ कब होगा ठाकुर जी का दर्शन, 8 और 9 के बीच में 8 और 9 के बीच में, 7 बजे के बाद दर्शन होगा, नहीं जब दर्शन का समय 7:15 तो 1 सेकंड लेट भी होना चाहिए, जब भगवान को भोग लगाने का समय है समझो 12 बजे तो बिल्कुल 12 बजे ही ठीक समय पर भगवान को भोग लगाना चाहिए और बिल्कुल साफ होना चाहिए। जब ठाकुर जी के लिए भोग बनाओ तो एकदम भोग बनाने के बाद रसोई साफ कर देना चाहिए, बर्तन साफ कर देना चाहिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप बिल्कुल शरीर को शुद्ध रखोगे साफ रखोगे मन भी, उसको मन पर भी प्रभाव पड़ेगा, अगर मंदिर को गंदा रखोगे ब्रह्मचारी आश्रम को गंदा रखोगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा मन में। इसके लिए भीष्म देव जी, ये तो भीष्म देव जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हम केवल आपको सुना रहे हैं जो कि भीष्म देव जी ने कहा। तो भीष्म देव जी ने कहा कि मन तथा शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, आगे उन्होंने कहा किसी के प्रति शत्रु भावना रखना, हाँ समझे आप, भीष्म देव जी कह रहे हैं किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखो, ये बहुत आवश्यक, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखो। तो मैंने शायद आपको एक घटना सुनाई थी पिछले समय, पता नहीं शायद फिर से सुना दूंगा, ये प्रभुपाद की एक लीला है कि प्रभुपाद जी 31 साल पहले 1968 की बात है, हम लोग प्रभुपाद जी के साथ गए थे एक स्कूल में जहां की प्रभुपाद जी ने उपदेश दिया। तो प्रवचन के बाद प्रभुपाद जी ने पूछा एनी क्वेश्चंस, तो वहां उस सभा में एक बंगाली भक्त थे। ये व्यक्ति रोज आता था, ये घटना बीती थी मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो ये व्यक्ति रोज आता था प्रभुपाद जी को मिलने, लगभग रोज। पर उसने सबके सामने प्रभुपाद जी का बहुत अपमान कर दिया। उसने कहा कि आप एक क्रिश्चियन देशों में क्यों आते हो, ये हिंदू धर्म का प्रचार करने वगैरह, काफी अपराध किया। तो भक्तों के हृदय में तो जब क्रोध आ गया था, पर प्रभुपाद जी बिल्कुल शांत थे और बिल्कुल बुरा नहीं माने। फिर 2 महीने बाद जब प्रभुपाद जी वो शहर छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा गोपाल जाओ उस आदमी को बुला कर लाओ। तो मैंने कहा कि आप उसे क्यों मिलना चाहते हो, उसने तो आपका इतना अपमान किया था सबके सामने, सब भक्तों में क्रोध है। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने पूर्व जन्म में उसको कुछ किया होगा जिसको उसने बदला लिया। तो प्रभुपाद जी ने उस आदमी को बुलाया और आशीर्वाद दी शहर छोड़ने से पहले। तो भीष्म देव जी कह रहे हैं किसी के प्रति शत्रु भाव न रखो। तो भक्त जो है किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता। हम भागवतम में पढ़ते हैं कि जब पूछा परीक्षित महाराज ने कि तुम्हारे पांव को किसने चोट दिया है, धर्म ने उत्तर दिया नहीं दिया, हालांकि उन्हें पता था कि किसने चोट दिया। तो भक्त जो है किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता। वो शत्रु भाव रखने में अंत में नुकसान हमारा ही है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे के विषय में बुरा सोचते हो। दूसरे के विषय में बुरा सोचोगे तो क्या होगा, हम अज्ञानता से अपराध करेंगे, इस प्रकार अपराध बढ़ते जाएंगे और फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी हमें ये उपदेश देते थे कि हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, हमारे के घरे के गुणों को देखें। केवल साफ स्थानों में जाती है और मच्छर जो है गंदे, आपका चमड़ा कट जाए तो मच्छर वहां जाएगा, जहां गंद है वहां मच्छर मिलेंगे। हाँ, जो कवे हैं वो सब गंद के स्थान में जाते हैं और जो हंस है वो साफ। तो हमें हंस के समान होना चाहिए, कवों के जैसा नहीं। तो दूसरों के दोषों को देखना सबसे सरल चीज है, पर हमें प्रयास करना चाहिए एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने के लिए एक दूसरे के गुणों को देखें। तो भीष्मदेव जी ने कहा है किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखो। ये भीष्मदेव जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम केवल आपको सुना रहे हैं जो कि भीष्मदेव जी ने किया, और आप इसे भागवतम के प्रथम स्कंद में पढ़ सकते हैं। तो कहा कि किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखो। आगे भीष्मदेव जी ने क्या कहा, सरल जीवन, सादा जीवन बिताओ। हमारा सिद्धांत क्या है, सादा जीवन और ऊंचा विचार, यह है हमारा सिद्धांत, सादा जीवन ऊंचा विचार। भौतिकवादियों का लक्षण है ऊंचा जीवन और सादा विचार, वो रहेंगे राजा जैसे और सोचेंगे पशुओं जैसे, है ना। पैसा नहीं है तो कर्जे में ले लो। इसके लिए आप रास्ते में इतनी मोटरें देखते हैं आजकल, क्योंकि कर्जे में बड़े आसानी से मिल जाती है। तो भीष्मदेव जी ने कहा सादा जीवन, सरलता के साथ रहो, सादा जीवन निभाओ। सादा जीवन ऊंचा विचार अगर नियम रहेगा तो फिर आप अपना कीमती मनुष्य जीवन का उपयोग करोगे क्या, अच्छे कार्यों के लिए। तो भीष्मदेव जी ने कहा कि सादा जीवन बिताओ, और आगे उन्होंने क्या कहा कि सेवकों या अधीक्षकों का पालन करना, कि जो व्यक्ति आपकी सेवा करें उनका पालन करें, उनकी हम देखभाल करें। जैसे मंदिर में सब भक्त सेवा कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब सेवकों की भी देखभाल करें। ये नहीं कि केवल हम ठीक रहें और सेवकों की हम चिंता नहीं करें। भीष्मदेव जी कहते हैं सेवकों की देखभाल करना, क्या उन्होंने कहा स्पष्ट, सेवकों या आक्षितों का पालन करना। तो सेवक जो सेवक हैं उनका पालन करना, उनकी देखभाल करना, तो ये हम सबका कर्तव्य है। जैसे आज हम क्या देखते हैं, जो नेता हैं राजनीतिक नेता, वो प्रजा की चिंता करते हैं? हाँ करते हैं? नहीं करते प्रजा की चिंता। प्रजा भूखी रहे बड़े बीमारी हो कुछ उन्हें चिंता नहीं। पर भीष्म देव जी का अगर हम उपदेश मानते तो वो कह रहे हैं सेवकों की सेवकों का पालन करना। जो व्यक्ति आपकी सेवा करे उसका पालन करो, उसकी देखभाल की चिंता करो। अगर इस प्रकार का हम उपयोग ज्ञान रखें तो आज समाज का जो रूप है बिल्कुल ही अलग हो जाए। तो ये संक्षेप में है भीष्मदेव जी का उपदेश। भीष्मदेव जी ने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया, क्योंकि उपदेश युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन की प्राप्ति के पश्चात हम जीवन को सफल बना सकें। तो ये भीष्मदेव जी का उपदेश हम भगवत में प्राप्त करते हैं। तो संक्षेप में इस श्लोक में भीष्मदेव जी कह रहे हैं कि भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने से भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। कहां? हमारे मन में, हृदय में। तो हम सबको इस स्थिति पर पहुंचना है कि हम सदा भगवान का कीर्तन करें, भगवान अपने आप को प्रकट करें। अभी आप कहोगे भगवान प्रकट हो जाओ, वो प्रकट तो नहीं होंगे, भगवान इतने सस्ते तो नहीं है। हाँ बुरा नहीं मानना, भगवान भक्तों की इच्छा पूरा करना चाहते हैं, पर वो ये भी देख रहे हैं कि कौन सा भक्त मेरा कितने आदेश का पालन कर रहा है। नहीं, कई बार लोग सोचते हैं हम संत महात्मा के पास जाएंगे, चंदा देंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खैर अच्छे कार्य में चंदा दोगे तो लाभ तो कुछ मिलेगा, पर अगर भगवान कहते हैं ये यथमाम प्रपदे अंते, जितनी मात्रा में कोई मेरी शरण में आएगा उतनी मात्रा में मैं उसे बुद्धि दूंगा, ये हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो भीष्मदेव जी इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा, जो भक्त भगवान उसकी भक्ति की से प्रभावित होकर उसके हृदय में और मन में प्रकट करेंगे, और जब भौतिक शरीर वो व्यक्ति त्यागेगा तो सकाम कर्मों के बंधन से उसे मुक्त करेंगे। खैर सकाम कर्मों में वैष्णव और भक्त रुचि नहीं लेते, पर कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त भगवान को मन में बिठाता है उनके दिव्य नामों के उच्चारण से। तो यह है सबसे बड़ी संपत्ति, क्या? ये दिव्य नाम। इसलिए ठाकुर भक्ति नव जी कहते हैं ये हरि नाम की भीख मांगो जीव जागो प्रार्थना में। ठाकुर भक्ति नव जी क्या कह रहे हैं, क्या चीज की भीख मांगो? धन की, दौलत की, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की? नहीं, कहते हैं हरि नाम की भीख मांगो, क्योंकि ये एक दवाई है जो तुम्हें भगवत प्रेम दे सकती है। और ये हरि नाम कहां से आ रहा है? यूएसए। हाँ, ग्लोका वृंदावन, ये हरि नाम आ रहा है ग्लोका वृंदावन से। और ये हरि नाम को प्राप्त करने के लिए हमें भीख मांगनी पड़ेगी, हरि नाम को साथ रखने के लिए अपराधों से बचना पड़ेगा, हरि नाम को साथ रखने के लिए झूठ बोलने से बचना पड़ेगा, हरि नाम को साथ रखने के लिए दोषों से बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे, दोष करेंगे, अपराध करेंगे, आज नहीं तो कल इसका भयंकर परिणाम होगा। तो अगर हम सब ये चाहते हैं कि हरि नाम हमारे साथ जुड़े रहे अंत तक, तो हमें भीष्म देव जी की इस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए और सावधानी के साथ हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न? मीना रोड में लोग प्रश्न नहीं पूछते। तो भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, भीष्म देव जी क्या कह रहे हैं, ये अनुवाद का मूल उपदेश क्या है? हाँ, कोई कोई जवाब नहीं रहा? हाँ नहीं, पहले मैं प्रश्न बना, ये जो अनुवाद है, अनुवाद अनुवाद में भीष्म देव जी क्या उपदेश दे रहे हैं? नाम लोगे सावधानी के साथ, भक्ति भक्ति से, भक्ति से सावधानी से लोगे, तो अगर आप लापरवाही से नाम लोगे तो भगवान प्रकट नहीं होंगे, स्पष्ट रूप से कहा गया है। हाँ, जैसे कि कई बार हम देखते हैं हमारे भक्त जाप कर रहे हैं पर सो जाते हैं वगैरह, वो अच्छा नहीं है। देखो, सावधानी से जाप करो, कीर्तन करो, फिर भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे, और फिर उसका क्या लाभ होगा? प्रकट करेंगे मन में, और फिर उसका क्या लाभ होगा, उसे हमें क्या मिलेगा? हाँ, कौन? हाँ हाँ, हृदय में प्रकट होंगे, और क्या करेंगे साथ में? और क्या, मृत्यु के समय? तो हमने प्रवचन देते हुए आपको उदाहरण दिया था दो भक्तों का, जो भगवान का चिंतन कर रहे थे और कठिन स्थिति में होते हुए भगवान ने उनकी रक्षा की। कौन थे ये, एक कौन से भक्तों? हाँ नहीं नहीं, जो हाथ उठा के, हाँ अमरेश महाराज, क्या उदाहरण था उनका? और दूसरा कौन सा उदाहरण था? जज भारत। अच्छा, और भीष्म देव जी ने नौ महत्वपूर्ण उपदेश दिए और कहा कि हर मानव व्यक्ति को इनका पालन करना चाहिए। इन नौ उपदेश, नौ पॉइंट्स क्या हैं? पहला कौन सा था? पर चैतन्य महाप्रभु ने तो क्रोधित हुए थे। तो किस स्थिति में क्रोध की इजाजत है? दूसरा क्या था? हाँ हाँ, झूठ नहीं बोला, अब कहोगे फंस गए। बहुत एक जीवन में तो ये नियम रहता कि सच नहीं बोलना। आजकल तो लोग वकीलों के पास जाते हैं, एग्रीमेंट भी साइन करते हैं, एग्रीमेंट में भी झूठ लिखा होता है। तो देखो, भीष्म देव जी कह रहे हैं झूठ नहीं बोलना, और भौतिकवादियों का क्या नियम है? सच नहीं बोलना। तो कई बार हम भक्ति के मार्ग में आते हैं तो ये आदत जो है पड़ी रहती है, जैसे कि पंखा तेजी से चल रहा है तो आप स्विच बंद कर दो तो क्या एकदम रुकेगा? नहीं, एकदम नहीं रुके, आस्ते आस्ते हो गया। तो कई बार, क्योंकि हमें झूठ बोलने की इतनी आदत रहती है, भक्ति में आने के बाद भी वो आदत नहीं जाती, पर हमें ज्ञान के सहयोग से ये आदत बिल्कुल त्याग देना चाहिए, क्योंकि भक्ति के रास्ते में झूठ बोलना शोभा नहीं देता, क्योंकि हमें हमेशा भूलना नहीं चाहिए भगवान हर चीज के साक्षी है, है ना। उसका हमें पढ़ना। फिर तीसरा आगे क्या बोला? अगर आप लोग के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है तो बराबरी से बांटना, स्विस बैंक अकाउंट में नहीं जोड़ देना। क्योंकि भीष्म देव जी ने कहा है कि समानता के साथ संपत्ति को बांट देना। हाँ, आपका डायमंड मार्केट एकदम ऊंचा हो जाए तो फिर आप लोग इसको भूलना मत। फिर आगे क्या है? क्षमा, क्षमा की भावना भक्त में होनी चाहिए। जिस भक्त में क्षमा की भावना नहीं है, जिस व्यक्ति में क्षमा की भावना नहीं है, उसमें भक्तों के लक्षण नहीं है। आगे क्या? पांचवा। हाँ, आगे क्या? मन और शरीर को शुद्ध रखना। आगे क्या? आप तो पढ़कर सुना रहे हो, पढ़कर नहीं। आगे क्या? नहीं नहीं, हाँ नहीं, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखना, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखना, चाहे वो आपकी निंदा करे या आलोचना करे, आपको कितना भी कष्ट पहुंचाए, पर आप अपनी तरफ से, दूसरा व्यक्ति चाहे गलती करे पर आप अपनी तरफ से गलती मत करो। इसका ये परिणाम होगा कि आपके जीवन में भी कोई अड़चन नहीं आएगी। तो किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखना। आगे क्या? हाँ हाँ, सेवकों का पालन करना, उनकी देखभाल करना। तो इससे क्या मतलब? हमको सबकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे मंदिर में कोई नया भक्त भी आए रहने के लिए, क्योंकि वो आया है भगवान की सेवा करने के लिए, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये नहीं कि हम सब एक या दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति, सबकी देखभाल करनी चाहिए। और राजा का कर्तव्य है कि पूरी प्रजा का की देखभाल करे। हाँ, और एक आप लोग भूल गए, साधा जीवन। तो हमारा नियम क्या है? साधा नियम और ऊंचा विचार, साधा जीवन। साधा जीवन बिताने का भाव रखोगे तो आपको ज्यादा चिंता नहीं, उतना ही परिश्रम करो जितना आवश्यक है। अच्छा, और कोई प्रश्न है किसी का? क्योंकि आप लोग प्रश्न नहीं पूछते इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ मायावादी, हाँ हाँ समयवाद का, हाँ हाँ स्पिरिचुअल कम्युनिज्म का मतलब है सादा जीवन बिताना, सारी संपत्ति भगवान की है और उतना ही स्वीकार करना जितना की अवश्य है, ज्यादा नहीं। ओके, तो जन्माष्टमी का कार्यक्रम अच्छा हुआ? कितने लोग आए थे? यही सब हमने देखा कि हर जगह जन्माष्टमी में बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैंने सुना जुहू में भी बहुत थी, दिल्ली में हमने 3 लाख व्यक्तियों की उम्मीद की थी, पर सोच सुना है 6-7 लाख आए। अब यहाँ भी काफी लोग आए। हाँ वही ना, 30-40,000। जन्माष्टमी वाले दिन हम लोग ने बड़ौदा में बड़े मंदिर का उद्घाटन भी किया, बहुत सुंदर मंदिर है बड़ौदा में, गौरनिताई और राधा श्याम सुंदर और जगन्नाथ सुभद्रा बलराम की मूर्ति, बहुत बड़ा मंदिर। कभी आप लोग जाओ तो सूरत तक जाओ तो बड़ौदा भी चले जाना नए मंदिर का दर्शन लेने के लिए। और हम लोग ने दिल्ली में वो जो भगवत गीता एनिमेट्रॉनिक शो है उसका भी उद्घाटन किया, सिर्फ गुदक केस में आके देखा था। आपने देखा था? नहीं देखा, अभी आपको फिर जाना पड़ेगा देखने के लिए। क्यों नहीं देखा? और हमने पहली बार इतिहास में ये 21 मिनट का एनिमेट्रॉनिक शो है, और ऊपर 3 स्क्रीन में वीडियो चल रहा है, और इसमें पहले 15 मिनट 12 मिनट प्रभुपाद जी का जीवन दिखा रहे हैं वीडियो में, और प्रभुपाद जी का प्रवचन, प्रभुपाद की मूर्ति है, वो मूर्ति सिर उठाती है, हाथ उठाती है, और फिर प्रभुपाद जी प्रवचन देते हैं कोई 6-7 मिनट के लिए, और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं आज समस्या ये है कि बहुत ढोंगी व्यक्ति भगवान का दावा होने का दावा कर रहे हैं। तो जब वो भगवत की फिर वहां को कहने के बाद एक और पर्दा खोलता है जिसमें फिर आप कृष्ण और अर्जुन को देखते हैं, और फिर भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को। तो आप ये सब देख सकते हो अभी आप। तो ये 21 मिनट का शो है, बड़ा सुंदर शो है। तो उसका उद्घाटन भी हमने जन्माष्टमी वाले दिन किया। ओके, हरे कृष्ण। आप सब कृपा करके ये भीष्मदेव जी की शिक्षा का लाभ उठाना। हाँ, ये शिक्षा आपके लिए और हमारे लिए और हम सब के लिए है। हरे कृष्ण। Thank you.